Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Shreshtam Manamapi Shachiputram Atrasvarupam Rupam Tasyagrajam Urupurim Maturim Goshtavatim Radha Kundam Girivaramaho Radhika Madhavasham Prapto Yasya Pratita Kripaya Shri Gurum Tamnatoshi Vandeham Shri Guru Shri Atapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavascha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitantam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. આપ સભી બધા પોતાનો મોબાઈલ નીકાળે અને સાયલેન્ટ અથવા સ્વિચ ઓફ કરી દે. જેનો મોબાઈલ વાગશે એમનો લઈ લેવામાં આવશે. એટલે જેમનો મોબાઈલ હોય એ જો ન ફાવતો હોય તો બાજુમાં આપો, એટલે તે સાયલેન્ટ કરી દે અથવા સ્વિચ ઓફ કરી દે. અને જે બાળકો અહીંયા છે, બાળકો કોઈ અહીંયા રમે નહીં, સામે મેદાનમાં, મંદિરના મેદાનમાં જતા રહીએ. અને નાના બાળકો જો હોય, ડિસ્ટર્બ કરતા હોય તો તે પાછળ બેસે, એટલે ડિસ્ટર્બ કરે તો પાછળ મંદિરના ગ્રાઉન્ડમાં જઈ શકાય. એટલે ચાલુ ક્લાસે કાંઈ ડિસ્ટર્બન્સ ના થાય અને વચ્ચેથી કાંઈ ઊભા ના થાય એવી બધાને નમ્ર વિનંતી છે. બધા મોબાઈલ પોતાનો સ્વિચ ઓફ કરે. ખાસ વિનંતી પધારેલ છે ભક્તિ વિકાસ સ્વામી મહારાજ, જેઓ આપણને ભગવદ્ ગીતા ઉપર, રથયાત્રા ઉપર વિશેષ કાર્યક્રમ પ્રવચન આપવાના છે. તો આપણે બધા શાંતિપૂર્વક સાંભળીએ. હરે કૃષ્ણ.
ભાગવદ ગીતા કે ઉપર કુછ કહેના ચાહીએ. ભગવદ ગીતામાં ભગવાન કૃષ્ણ બહુ કુછ કહેતે હૈ. કર્મ, જ્ઞાન, યોગ, ધર્મ, આત્મા ઇત્યાદિ કે બારે મેં ભગવાન કૃષ્ણ કા અંતિમ ઓર સર્વોચ્ચ ઉપદેશ હે. આપ સબ જાનતે હૈ ક્યા? આપ સબ કૃષ્ણ કે ભક્ત હૈ? આપ સબ ભગવદ ગીતામાં વિશ્વાસ રખતે હૈ? મન્મના ભવ મદ ભક્તો મદ્યાજી માંગ નમસ્કરો મામે વૈશ્યસી સત્યમ તે પતિ જાને પ્રિય સિમે. સબ જો જનતે કહીએ મન્મના અમારે અંદર કે ભક્ત સબ જનતે હૈ. ઓર આપ જો બહાર સે આયા આપ નહી જાનતે. ઇસકા અર્થ હૈ ભગવાન કૃષ્ણ અર્જુન કો કહેતે હૈ. ઓર અર્જુન કે દ્વારા સબ વિશ્વાસી લોગ કો કહેતે હૈ. સદૈવ મુજકો ચિંતન કરો, मेरे मेरे भक्त बन जाओ, मेरी पूजा करो, उपासना करो और मुझको नमस्कार करो, और इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरा पास आयोगे। ये मेरा वचन है, मेरी प्रतिश्रुति है। वो भगवान कृष्ण का अंतिम और सर्वोच्च उपदेश है। और ये उपदेश प्रदान करने के लिए ये मंदिर स्थापित है। मंदिर बहुत है जामनगर में, जामनगर का शहर में और जामनगर का जिला में बहुत मंदिर है। प्रसिद्ध है वो राम नाम का मंदिर है, जिसमें श्री राम जय राम जय जय राम धूम चलते हैं, और बहुत है, बहुत है। महादेव का मंदिर बहुत है, कृष्ण का मंदिर है, चामुंडा का मंदिर है बहुत। कार में मैं देखते हूँ चामुंडा माता, तो पास में एक चामुंडा मंदिर है, है? पास में। तो मंदिर आप सब जानते हैं मंदिर क्या है। तो यहाँ आप आए हैं और मंदिर जाते हैं किस लिए? किस लिए? शांति मिलती है। और विशेषकर आप मंदिर में आप क्या करते हैं? आप दर्शन करते हैं, दर्शन करते हैं, और ये मंदिर में भी दर्शन होते हैं। लेकिन ये मंदिर की विशेषता, कीर्तन दर्शन होते हैं और विशेषता है कीर्तन और शिक्षण। ये मंदिर में कीर्तन चलते हैं, दर्शन होते हैं और विशेषकर कीर्तन होते हैं, क्योंकि हरे नाम हरे नाम इव केवलम खलो नाश्चैव 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 गतिरन्यथा। बृहन्नारदीय पुराण का एक महत्वपूर्ण श्लोक है, जो विशेषकर चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रचारित है, और ये हरे कृष्ण आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय में है। और केवल चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय में नहीं, सब वैदिक संप्रदाय स्वीकार करते हैं कि कलि युग में हरि नाम ही परम उपाय, मुख्य उपाय परम गति प्राप्त करने के लिए। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, तीन बार उक्ति है। तीन बार क्यों? एक बार पर्याप्त है, तीन बार कहना है क्योंकि कलि युग का एक मुख्य लक्षण है कि लोग की बुद्धि, विशेषकर आध्यात्मिक बुद्धि बहुत कम होती है, इसलिए तीन बार कहना चाहिए। हरे नाम हरे नाम हरे नाम, ठीक है, समझ में। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलो नास्ति ना अस्ति एव, मतलब कोई दूसरा उपाय नहीं है। कलि युग में ध्यान करना हो सकते हैं, मूर्ति पूजा चलते हैं, यज्ञ करना चलते हैं, लेकिन यदि हरि नाम नहीं करना, हरि का नाम जाप और कीर्तन नहीं करना है, तो गति परम गति प्राप्त करना संभव नहीं है। वो परम गति क्या है? जैसे वो गीता का श्लोक जो अभी बताया, मामे वैश्यसि सत्यं ते, मेरा पास तुम आयोगे यदि मेरी उपासना करोगे, कृष्ण भगवान अर्जुन को बताया। तो परम गति क्या है? कृष्ण का धाम, गोलोक धाम, भौतिक संसार के ऊपर आध्यात्मिक परम धाम है, और परम धाम में Binna binna star hai, Vaikunthe, Ayodhya dham hai, Dwaraka dham hai, Dwaraka paas mein hai, aap sab jante hai, aapka bhagya hai, aap Dwarakadish ke paas rehte hai. Wo Dwaraka jo Saurashtra mein sthit hai, yahan se kitne 103 kilometer aise rasta se jaana वो ओरिजिनल द्वारका जो आध्यात्मिक जगत में है उसका प्रतिरूप है. द्वारका धाम भौतिक जगत में उपस्थित है परंतु वो पूरा आध्यात्मिक है. और द्वारकाधीश जो वहां पर अधीश राजा है, नेता है, वो द्वारकाधीश का सनातन धाम है. भौतिक जगत के परे वैकुंठ जगत के ऊपर द्वारका धाम है और उसके ऊपर भी मथुरा है और उसके ऊपर वृंदावन जो आध्यात्मिक जगत में उसको गोलोक बोलते हैं और भौतिक जगत में वृंदावन धाम जो है उसको गोकुल बोलते हैं और जो आध्यात्मिक जगत में है वो गोलोक बोलते हैं. और गोकुल व्रज धाम जो उत्तर प्रदेश में मथुरा जिला में है हमारी स्थूल दृष्टि से गोचर है, वो वास्तव में आध्यात्मिक धाम में गोकुल धाम से अभिन्न है. कैसे समझना ये कि क्योंकि हम देखते हैं वृंदावन में द्वारका में जो द्वारका जो गुजरात राष्ट्र में है और वृंदावन जो उत्तर प्रदेश राष्ट्र में, हम देखते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि होते हैं. भौतिक जगह में ये चार मुख्य लक्षण है भौतिक जगत में. जैसे भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान का एक अंश है यही समझना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम. ज्ञान का एक मुख्य लक्षण है यही देखना कि भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जरा अर्थात वार्धक्य बुढ़ापा और व्याधि चारों प्रकार के दुख, चार प्रकार के दुख होते हैं भौतिक जगत में. अनुदर्शनम, हम आंखों से देख सकते हैं और शास्त्र ज्ञान पारंपरिक ज्ञान से भी हम और अच्छी तरह देखना चाहिए. तो हम मंदिर आते हैं देखने के लिए, आप सब द्वारका धाम जाते हैं द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए और हम कीर्तन भी करते हैं जिससे हम परम गति जा सकते हैं. और ये मंदिर में दर्शन होते हैं, कीर्तन होते हैं और शिक्षण भी होते हैं. जैसे मैं अभी आपको बताते हैं और इस प्रकार प्रतिदिन यही मंदिर में भगवद गीता के ऊपर, श्रीमद् भागवत के ऊपर कक्ष होते हैं, प्रवचन होते हैं, क्योंकि हमें सीखना चाहिए. मानव जन्म प्राप्त करके हमें सीखना चाहिए मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, भगवान कौन है, भगवान और हमारे बीच क्या संबंध है और किस प्रकार हम भौतिक माया से, भौतिक माया का प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं. अधिकांश व्यक्ति वो भौतिक आकर्षण से मुक्त होने के लिए कुछ भी प्रयास नहीं करते हैं. कुछ भक्ति करते हैं लोग परंतु वे नहीं जानते हैं कि भक्ति करने का वास्तविक उद्देश्य क्या है। बहुत से लोग भक्ति करते हैं लाभ के लिए, भौतिक लाभ के लिए, और जैसे हम भक्ति करने से हम दिल में कुछ सुख आता है, अच्छा होता है। लेकिन मानव जन्म का क्या गंभीरत्व है नहीं समझते हैं, इसलिए सीखना चाहिए। और भी क्या सीखना चाहिए, भक्ति किनको अर्पित होने चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि साईं बाबा की पूजा बहुत होती है, लेकिन साईं बाबा के बारे में किसी शास्त्र में कुछ भी उल्लेख नहीं है। ये एक नया काल्पनिक अशास्त्रीय प्रथा है, लेकिन लोग सोचते हैं साईं बाबा की पूजा करने से कुछ लाभ होता है, अच्छा होता है, शायद भौतिक लाभ होते है, लेकिन उसके द्वारा मानव जन्म का वास्तविक उद्देश्य का सत्यानाश होते है। हमें समझना चाहिए भगवान कौन है। गीता में एकदम स्पष्ट होते है कि श्री कृष्ण भगवान है। जैसे दशम अध्याय में अर्जुन भगवान कृष्ण को कहते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। अर्जुन कृष्ण को कहते हैं कि परम ब्रह्म आप, परम धाम आप, परम पवित्र आप, पवित्रम परमं भवान, शाश्वत दिव्य पुरुष आप है, आदि देव आप है। आदि देव का मतलब ब्रह्मा, रुद्र, मरुत, चंद्र, वायु इत्यादि देवताओं के मूल स्रोत श्री कृष्ण है। जैसे भागवत में भी कहा गया है, यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्याय स्तव। हम जो ये पृथ्वी पर है, हम जो चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में हम नहीं कहते, लेकिन हिंदू लोग अनेक देवी देवियों की पूजा करते हैं। और देवी देवियों किन की पूजा करते हैं? श्री कृष्ण की। यं ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत इत्यादि देवगण श्री कृष्ण दिव्याय स्तव, श्री कृष्ण की प्रशंसा करते है दिव्य स्तव उच्चारण करने से। तो आदि देव अज, ये अज शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अज का मतलब कृष्ण का जन्म नहीं होते है। कुछ दिन के बाद, कितना, 6 हफ्ते के बाद जन्माष्टमी महोत्सव यहाँ आयोजित होगा। जन्माष्टमी का मतलब जिस दिन में श्री कृष्ण का जन्म हो। परंतु वास्तव में समझना चाहिए श्री कृष्ण अजा है। जैसे चतुर्थ अध्याय में भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानमीश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा जन्म नहीं होते, लेकिन सब जानते हैं श्री कृष्ण मथुरा में जन्म लिया है और श्री कृष्ण का नाम है देवकी पुत्र। इसमें क्या रहस्य है? श्री कृष्ण अजोपि सन् अव्ययात्मा, श्री कृष्ण का रूप अव्यय आत्मा है। इसका मतलब कृष्ण का रूप का जन्म नहीं होते है, ह्रास नहीं होते है, मृत्यु नहीं होते है, परंतु कपट मानुष, ये शब्द श्रीमद् भागवत में आते हैं। तो मनुष्य जैसे आते हैं भौतिक संसार में कृष्ण, परंतु वास्तव में साधारण मनुष्य नहीं है। हम सब जन्म लेते हैं और मृत्यु प्राप्त होते हैं कर्म फल के अनुसार, परंतु श्री कृष्ण कर्म फल से परे है, वे ईश्वर है, वे त्रिगुण सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण के ईश्वर है। भगवान कृष्ण कभी भी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से प्रभावित नहीं होते हैं। ये भौतिक संसार में आते हैं किस लिए? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान कृष्ण आत्म माया अपनी शक्ति अपनी दया से भौतिक संसार में आते हैं, इसलिए उनको अवतार बोलते हैं। अवतार का मतलब जो ऊपर से नीच हमारे बीच में आते हैं, परंतु उसका मतलब नहीं है कि चूंकि कृष्ण ऊपर से आते हैं नीचे हमारे बीच में आते हैं कि कृष्ण हमारे जैसे नीच हो गए, ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण अवतार लेते हैं हमको उद्धार करने के लिए, विशेषकर साधु जन जो विश्वासी है, परित्राणाय साधु नाम, और जो मूर्ख दुष्कृति पापी अपराधी राक्षस असुर कृष्ण और कृष्ण भक्ति के विरुद्ध है, ऐसे लोग के लिए विनाशाय च दुष्कृताम, इसलिए भगवान कृष्ण आते हैं। तो ये एक शब्द जो भगवत गीता में है अज अज, इसके ऊपर चर्चा करना बहुत विशाल हो सकती। अजय अर्जुन कहते हैं पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम, ये एक और बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। विभु का मतलब महान, भगवान महान है। श्री कृष्ण साधारण व्यक्ति जैसे आते हैं, परंतु इनकी बुद्धि इनके कार्यकलापों सब महान है, साधारण व्यक्ति जैसे नहीं है, वे विभु है। और हम क्या है? हम अनु है, इसका मतलब हम बहुत छोटे हैं। तो यही सब बातें समझना चाहिए। और इसलिए ये मंदिर केवल दर्शन देने वाले मंदिर नहीं है, ये मंदिर का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा प्रदान करना, क्योंकि अज्ञान अतिनिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हम सब अज्ञान से भौतिक जगत में आए और अज्ञान में रहते हैं। अज्ञान का मतलब क्या है? आप सब स्कूल गए हैं, स्कूल पास किए हैं, स्कूल कॉलेज, आप सब शिक्षित हैं। अज्ञान, हम सब अज्ञानी, इसका मतलब क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव है, जगत में आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव है। आधुनिक भारत में पहले जैसे आर्थिक अभाव नहीं है। मैं सर्वप्रथम भारत में आया कितना, लगभग 50 साल पहले, और उस समय भारत पूरे दुनिया में भारत गरीब देश, ऐसे भारत बदनाम था, बेगर्स कंट्री। और सब पॉलिटिशियन अमेरिका जाते थे, हमको पैसे दो, हमको अनाज दो, और आजकल गर्व से कहो हम भारतीय ऐसे भारत का गौरव ऐसे ऐसे भारत का स्थान दुनिया में भारत का स्थान बहुत ऊर्ध्वा हो गया है परंतु भारत का मुख्य क्या लक्षण है और मुख्य खजाना अभी तक भारतीय लोग नहीं समझे वो क्या है आध्यात्मिक ज्ञान भारत अभी श्रीलंका में क्राइसिस है पैसा का अभाव बहुत और इंडिया से पैसा देते $1 billion अफगानिस्तान को देते हैं अभी भारत बेगर्स कंट्री नहीं है देने वाले देश है क्या देना चाहिए मुख्य वो ज्ञान जो भारत में प्रचारित और प्रसारित था अभी वो ज्ञान जो भारत का मुख्य खजाना है वो ज्ञान आधुनिक भौतिक ज्ञान का शिक्षण से बहुत छिपा हुआ क्योंकि स्कूल में भगवद गीता का शिक्षण देना मना है शाखा से मना है यही शिक्षा मुख्य है यदि हम PhD होते डॉक्टर होते हैं बहुत शिक्षित होते हैं भौतिक दृष्टिकोण से परंतु हम नहीं जानते भगवद गीता का ज्ञान तो क्या होता है हम अज्ञान अतिमिरांधस्य हम अज्ञान से जन्म ले और अज्ञान में जीवन बीतते हैं और अज्ञान में देहांत होते हैं उसका मतलब क्या है फिर पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम फिर और दूसरी बात जन्म लेना पड़ेगा अज्ञान में और तीसरी बात और असंख्य बात इसलिए विशेषकर जो भारत में जन्म लिया है मानव रूप में क्योंकि मच्छा भी बहुत है मक्खी भी बहुत है भारत में जन्म लेना सब कुछ है मानव जन्म बहुत दुर्लभ और मूल्यवान है दुर्लभ मानव जन्म दुर्लभ मानव जन्म जो भारत में प्राप्त करते हैं उनका मुख्य कर्तव्य है परमार्थिक ज्ञान प्राप्त करना और यही मंदिर का मुख्य उद्देश्य है कीर्तन करना और आध्यात्मिक शिक्षण देना इसलिए यहाँ पर भगवद गीता के ऊपर श्रीमद् भागवत के ऊपर नियमित रूप से शिक्षण की व्यवस्था होती है और हम यहाँ पर बुक स्टॉल लगाया है जिसमें आप वास्तविक भगवद गीता श्रीमद् भागवत भक्ति रसामृत सिंधु उपनिषद इत्यादि शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं तो ये हमारी विनती है कि आप सब पुण्यशाली लोग हैं आपका मूल्यवान समय से कुछ निकले यहाँ आने के लिए तो आप सोचिए आपका जीवन कौन सी दिशा पर जा रहा है आप मुक्ति का पथ गोलोक के पथ जा रहा है या पुनरापि जननम पुनरापि मरणम उसी पथ पर जा रहा है दुर्लभ मानव जन्म सोचना चाहिए कि मानव जन्म बहुत दुर्लभ है दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके तो जन्म जैसे जीवन बीतना नहीं चाहिए जन्म क्या करते खाते पीते सोते योनाचार करते हैं, मैथुन करते हैं, वो मानव जीवन में भी वैसे होते हैं, परंतु मानव जीवन में पारमार्थिक ज्ञान प्राप्त करने चाहिए। और पारमार्थिक ज्ञान का सर्वोच्च स्तर वो है मन मना भव मद भक्त हो मध्याजी मांग नमस्करु माने वैश्यसी सत्यम थे प्रति जाने प्रियोसी में। भगवान कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन को सब आध्यात्मिक ज्ञान संक्षेप में कहने के पश्चात कहते हैं, सदैव मुझको चिंतन करो मन मना, सदैव मेरे भक्त बन जाओ, मेरी पूजा करो, मुझको नमस्कार करो। तो भगवत भक्ति, कृष्ण भक्ति ज्ञान का सर्वोच्च स्तर है। अभी आपका अवसर है और आपका कर्तव्य है केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना नहीं, दूसरों को देना भी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भारत भूमि ते होइलो मनुष्य जन्म, जा जन्म सार्थक करी करो पर उपकार। जिनके भाग्य है मानव रूप में जन्म लेना भारत में, उनका कर्तव्य है जन्म सार्थक करना। सार्थक करना सक्सेसफुल, इसका मतलब कृष्ण भक्ति से। चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण है और भक्ति प्रचारक के रूप में है। जो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तो कृष्ण भक्ति तीव्रता से, कृष्ण भक्ति करने से जन्म सार्थक करो और करो पर उपकार। पर उपकार का मतलब जिससे दूसरे लोग भी ये अनमोल कृष्ण भक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, प्रयास करें। तो ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावन अमृत आंदोलन का उद्देश्य यही है कि सब जो सदस्य है स्वयं प्रयास करते हैं कृष्ण भक्ति पथ पर प्रगत होना। सब हरि नाम जप करते हैं प्रतिदिन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सब सदस्य जो है प्रयास करते हैं एक साथ एकत्रित होकर कृष्ण भक्ति प्रचार करना। तो ये हमारी विनती है, आप ये महान सुप्रयास में अंश ग्रहण करिए, आप शुद्ध कृष्ण भक्ति पथ पर चलाए और इस प्रकार आपका दुर्लभ मानव जन्म सफल बनाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण, किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कोई ना प्रश्न, हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण,
हरे कृष्ण, वो उत्तर है, प्रश्न क्या है
प्रभु जी?
प्रश्न का उत्तर है हरे कृष्ण।
प्रभु जी, आपने बोला कि भारत की सच्ची शक्ति आध्यात्मिक शक्ति है, तो उसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि भारत अभी आर्थिक प्रगति कर रहा है, तो
होने चाहिए।
हाँ, तो चाहिए। यदि ये पॉसिबल नहीं है कि आर्थिक रूप से सक्षम हुआ है,
पाकिस्तान ज्यादा दूर नहीं है, कराची द्वारा से
आर्थिक रूप से सक्षम हुआ है, तो हो सकता है आर्थिक रूप की सक्षमता के कारण आने वाले समय में वो आध्यात्मिक रूप में दुनिया को अपना
आर्थिक बहुत है या
आर्थिक माने इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो हो सकता है आने वाले समय में वो आध्यात्मिक प्रसाद भी दुनिया को बेचे, वो नहीं हो सकता? तो ये भी एक उनका
एक्चुअली, यदि हम आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रयास करेंगे तो साथ साथ आर्थिक प्रगति और सब प्रकार सामाजिक प्रगति साथ साथ आ जाएगी। पहले भारत इतना धनवान था ये देश कि इंग्लैंड से पोर्चुगल से फ्रांस से वो सभी देशों वो क्रिस्टोफर कोलंबस जो अमेरिका गया तो प्रयास किया इंडिया जाने क्योंकि भारत की प्रसिद्धि थी कि इतना धनवान देश है हमें वहां जाना है फिर वेस्टर्न लोग यहाँ है मेरे ईश्वर के पूर्व पुरुष और सब धन लूट करके वापस गए और ब्रिटिश एम्पायर स्थापन किया ब्रिटिश एम्पायर इतना धनवान हुआ कैसे भारत से लूट करके तो यदि हम आध्यात्मिक प्रयास करेंगे तो साथ साथ सभी प्रकार के उपकार आ जाएगा तो आर्थिक आर्थिक प्रगति भी होनी चाहिए जीवन में चतुर्वर्ग है धर्म अर्थ काम और मोक्ष तो अर्थ एक है परंतु आर्थिक प्रगति के लिए हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो सब अर्थ जो हाथ में आते है तो नहीं रहेगा तो भौतिक अर्थ मुख्य उद्देश्य नहीं है जीवन का परमार्थ मुख्य है
कृष्णा दूसरा किसी का क्वेश्चन है तो ओके थोड़ा आगे आ जाइए माइक
हरे कृष्ण
आपने जो अज शब्द का जो विस्तृत रूप हम नहीं समझ पाए ये हमारा देश पहले अजनाब खंड कहलाता था जो राम के वंशज है तो अज शब्द के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए
जैसे आपने लेक्चर में बताया अज शब्द का अर्थ वो रघुवंश के अंदर एक अजनाब करके राजा
हाँ
तो उसके साथ वो
उनका नाम
तो कंफ्यूज हो गए कि अज का शब्द का अर्थ समझाइए
अज वो शब्द भगवद गीता में आते हैं और सूर्य वंश में भी अज अजनाब एक व्यक्ति का नाम है तो जैसे कृष्ण एक नाम है यहाँ पर किसी का नाम है कृष्ण किसी का नाम है राम राम है तो बहुत आज तक बहुत लोग है जिनका नाम है राम रामदास रामचरण राम अवतार राम स्वरूप राम गुलाम एक बार में यूपी में था यूके में था यूके उत्तराखंड में था एक आदमी वहां उसका राम गुलाम था तो राम बहुत लोग का नाम है लेकिन वास्तव राम इस शब्द का अर्थ है रमन थे योगिनो नन्थे सत्यानंद चिरात्मने इति राम पदेनासो परम ब्रह्म अभिधीयते राम नाम का मतलब जो पूर्ण आनंदमय है वो पूर्ण आनंद में जिसमें योग आनंद लेते हैं वो परम सत्य परम ब्रह्म है तो राम शब्द का एक विशेष अर्थ है और राम एक नाम भी है तो इस प्रकार अज वो नाम का एक विशेष अर्थ है और एक व्यक्ति का नाम भी हो सकते हैं
हरे कृष्णा और किसी का क्वेश्चन प्रश्न है माता जी
एक युवती कुछ नहीं मालूम है नहीं
महाराज ने पूछो
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम
हरे कृष्ण माता जी का प्रश्न है कि अभी गुजरात में ज्यादातर माता जी की पूजा होती है आशापुरा मोगल माता जी तो साथ में कृष्ण भक्ति भी जाते
हैं
तो उसमें प्रगति हो सकती है कि नहीं हो सकती उसकी
माता जी की पूजा होती है भौतिक लाभ के लिए माता जी मतलब दुर्गा पार्वती विंध्यावासिनी बहुत नाम है सुभद्रा है जगन्नाथ सुभद्रा बालभद्र बीच में सुभद्र है तो भाई से रक्षित कौन है भगवान श्री कृष्ण की बहन है देवकी नंदन कृष्ण का नाम और एक नाम है यशोदा नंदन सब लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में था लेकिन ब्रजवासी बोलते हैं नहीं 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 वृंदावन में वास्तव में एक ही समय श्री कृष्ण का जन्म यश देवकी से और यशोदा से भी था वो चतुर्भुज रूप कंस का कारागार में वासुदेव और देवकी के सामने उपस्थित था और वो यशोदा जब एक शिशु को फायदा दिया तो एक ने कृष्ण और नाथ जी एक साथ आए थे यशोदा का गर्भ से और जब वासुदेव शिशु रूपी कृष्ण को लेके यशोदा के प्रसूति घर गए तो वो कृष्ण शिशु रूपी कृष्ण जो यशोदा के पास रहकर वो यशोदा का बालक शिशु के साथ मिलित हो गया और वो बालिका शिशु जो कृष्ण की बहन है मथुरा लेके गया और आप सब जानते हैं कि फिर वो कंस के सामने उपस्थित थी और बहुत जगह चला गया और इस प्रकार जगत में परमेश्वरी दुर्गा की पूजा होती है भौतिक लाभ के लिए और आध्यात्मिक लाभ के लिए हमें कृष्ण की पूजा करनी चाहिए श्री राधा के साथ दुर्गा कृष्ण की शक्ति है शिव शक्ति वो सब शक्ति के मूल स्रोत है कृष्ण और कृष्ण की अंतरंग शक्ति है श्री राधा और दुर्गा कौन है सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायैव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि सृष्टि स्थिति प्रलय सब कुछ होते हैं भौतिक जगत में और संभलते हैं दुर्गा कैसे भगवान कृष्ण की छाया जैसे भगवान कृष्ण की इच्छा और आदेश के अनुसार तो भौतिक लाभ के लिए माता जी की पूजा करने है और आध्यात्मिक लाभ के लिए श्री श्री राधा कृष्ण की पूजा करने है जो सबसे बड़े बुद्धिमान आध्यात्मिक लाभ के लिए प्रयास करते हैं क्योंकि भौतिक लाभ सब क्षणिक है और आध्यात्मिक लाभ सनातन होते हैं हम भी जब माता जी मंदिर के पास जाते हैं अंदर जाकर हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं ऐसा नहीं है कि हम देवी देवियों की निंदा करते, ऐसे नहीं है, लेकिन समझना चाहिए कि सब देवी देवी भगवान कृष्ण के दास दासी है। इसलिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अंतवत्थु फलंग तत्भावत्यल्पमेधस, अल्पमेधस अर्थात कम बुद्धि लोग देवी देवियों की पूजा करते हैं भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वो भौतिक लाभ जो है वो सब क्षणिक है, अस्थायी है।
हरे कृष्णा। अभी लास्ट क्वेश्चन किसी का है तो एक क्वेश्चन ले सकते हैं। या
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक सवाल है, आपने जो बोला था कि जो गुरु के बारे में ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरमीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो जो गुरु के बारे में बताया है कि गुरु के बिना कभी भी प्रभु का जो मोक्ष के लिए जो रास्ता है वो मिल नहीं सकता है, तो उस हिसाब से अभी हमको सही गुरु जो होना चाहिए, जो भगवत गीता में भी जो गुरु के लक्षण दिए हुए हैं, उस हिसाब से गुरु सही हमको मिले नहीं, या फिर हम जस्टिफाई ना कर पाए कि ये गुरु सही है कि नहीं हमारे लिए, तो फिर हमारा मोक्ष किस तरह से कर पाएंगे?
सदगुरु को पहचान कैसे करना है वो प्रश्न, सरलता में वही प्रश्न। गुरु कौन है? जो अज्ञान हटाते हैं कैसे? सत्य ज्ञान प्रदान करने से, ऐसा है नहीं? और सत्य ज्ञान क्या है? जो भगवद गीता में है, तो जो व्यक्ति भगवद गीता का ज्ञान यथारूप सिखाते हैं गुरु होते हैं। सरल सरल विचार है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जो भगवद गीता अनुवाद किए और उसके ऊपर व्याख्या किए, वो भगवद गीता उनका प्रकाशन भगवद गीता यथारूप बोलते गुजराती में भगवद गीता तेन मूल रूप है, मतलब उसमें कुछ काल्पनिक किसी भी काल्पनिक विचार नहीं है, मनगढ़ंत कुछ नहीं है। जैसे कृष्ण कहते हैं कि मैं परम हूँ तथा परतराम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे ऊपर कोई नहीं है, तो उस प्रकार श्रील प्रभुपाद व्याख्या कहते हैं। इसलिए वो भगवद गीता यथारूप है और इसलिए श्रील प्रभुपाद वास्तविक सदगुरु है। बहुत लोग बोल सकते हैं कि मैं सदगुरु हूँ, लेकिन सत क्या है? क्या है सत? क्या असत? भगवद गीता का ज्ञान से हमें विवेचना करना चाहिए। ना सचो विद्यते भावो इत्यादि, ना भावो विद्यते सतः। क्या है सत? क्या है असत? सब कुछ भगवद गीता से ही समझना चाहिए। और भगवद गीता जो यथारूप सिखाते हैं और कैसी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, जो परंपरागत गुरु से वो शिक्षा प्राप्त किया वो व्यक्ति योग्य है दूसरों को सिखाने के लिए। हरे कृष्ण। मदन तो एक व्यक्ति श्रीमद् भागवत का पूरा सेट लेते हैं और बहुत लगते हैं हमारे बीच बहुत लोग है जिनके घर भगवत सेट नहीं है, सबके घर में टीवी सेट है भगवत सेट नहीं है, तो टीवी फेंक दो भगवत ले लो। ठीक है, जब सब जो हाथ खाली देते है सबका भगवत सेट लेना है। तो आज पूरी चर्चा जो हुई वो ज्ञान के बारे में था और पूरा ज्ञान है श्रीमद् भागवत में. दाम कितने हैं?
6,500.
और शादी में कितने पैसा फेंकते हैं लोग? तमाशा में, पार्टी में, पिकनिक में,
ज्यादातर मोबाइल में.
मोबाइल
10-15,000 का मिनिमम. और हर घर में जितने लोग हैं
उतने. हरे कृष्ण. मोबाइल फेंक दो, श्रीमद् भागवत ले लो. तो सबका श्रीमद् भागवत लेना है. आ कैसे आप सब आपका अनमोल मानव जन्म नष्ट कर लेते हैं. समझाए गुजराती माँ, जैसे तैसे सबका श्रीमद् भागवत लेना है.